ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद अध्याय 9 अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 28। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामावितान मनुजः प्रपतन प्रसंगा। साक्षुदर्शिण भगवन् गृहीतः शोभं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा। तो तात्पर्य करने से पहले श्लोक के शब्दों को समझेंगे। श्लोक के शब्द किस तरह से हैं? प्रहलाद महाराज क्या है नरसिंह भगवान से इनकी स्तुति बहुत लंबी है ना। और प्रहलाद जी की स्तुति जो है तब शुरू हुई जब किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। 19 प्रकार की स्तुतियां, 19 प्रकार के लोगों ने 19 प्रकार की स्तुतियां की, नरसिंह भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब सबने कहा कि बेटा तुम करो स्तुति, है ना, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होंगे क्योंकि तुम्हारे कारण वो क्रुद्ध हुए हैं, तो तुम्हारे कारण ही प्रसन्न हो सकते हैं। जो तुम्हारा अपराध कर रहा था हिरण्यकश्यप को, जिसके कारण वो नाराज है, तो अब प्रसन्नता भी तुम्हारे कारण ही होगी, तो तुम करो स्तुति। तो 20वीं प्रकार की स्तुति अब प्रहलाद जी कर रहे हैं ना। और इसमें बहुत श्लोक हैं, 28 श्लोक तो ये चल रहा है ना। और कितने श्लोक संख्या से उन्होंने स्तुति करना शुरू किया था? 8वां श्लोक से, है ना। तो 7 घटा रहे हैं तो 21वां श्लोक चल रहा है प्रहलाद महाराज की स्तुति का। आज 21वां श्लोक चल रहा है ना, और चलता जाएगा। 21वां बहुत लंबी स्तुति है प्रहलाद महाराज की। तो इस श्लोक के शब्द समझिए, प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं। एवं जन्म, एवं का मतलब है इस प्रकार, है ना। इस प्रकार जन्म का मतलब है कोई व्यक्ति निपतितम गिरता जा रहा है। एवं जन्म निपतितम, इस प्रकार कोई व्यक्ति गिरता जा रहा है। प्रभाव अही कूपे, प्रभाव का मतलब है जन्म मरण, प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूप में, भाव माने जन्म लेना। यहां जो है जन्म का क्या है, अही कूपे सर्प कुआं, सर्पों से भरा कुआं। जन्म ही जो है क्या है, एक प्रकार का सर्प है और ये सर्पों से भरा कुआं, यानी जन्म 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 बार बार जन्म लेना। तो एक प्रकार से सर्प जो है, ये जन्म ही एक प्रकार का सर्प है। सांप जैसे काटता है तो जैसे कष्ट होता है, उसी प्रकार का कष्ट है जन्म लेने का कष्ट है, और बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म ही जन्म बार बार जहां लेना पड़ता हो, तो वो जो है कुआं है सर्प, सर्पों से भरा कुआं। तो प्रभाव अही कूपे, और जन्म है तो मृत्यु भी उसके साथ लगी है, बुढ़ापा। तो ये सब सर्पों के काटने की तरह है, ये कष्ट है ना। और वहां पर जो है मैं गिर रहा था। एवं जन्म निपतितम, इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो गिर रहा था, किसमें गिर रहा था, प्रभाव अही कूपे जन्म मरण के जो है सर्प के कुएं में। तो ये हमारी स्थिति है, प्रहलाद महाराज जो समझ रहे हैं अपनी स्थिति को कि मैं गिर रहा था तो मेरी रक्षा हुई है ना। मैं गिर रहा था निपतितम, इस प्रकार कोई व्यक्ति जो है गिर रहा था, जन्म मरण के सर्प के कुएं में गिर रहा था। कामा भी कामम, और उस जो कुएं है, ये जो कुआं है सर्प का कुआं है, इसकी क्या विशेषता है, काम अभी कामम, जिसमें कामनाओं की कामनाएं की जाती हैं, यदि भोगों की कामनाएं, इंद्रिय तृप्ति की कामना की जाती है। तो इसमें एकमात्र कार्य क्या है, काम अभी कामम, भोगों की कामना करना, कामाभिकामम अनु यह प्रपतन प्रसंग, अनु का मतलब है नीचे की ओर, अनु यह या बार बार, अनु का मतलब बार बार भी है, तो बार बार इसमें भोगों की कामनाएं की जाती हैं। अनु यह प्रपतन प्रसंग है ना, तो प्रपतन, प्रपतन का मतलब क्या है, गिरते हुए, प्रसंगा गिरने का कारण क्या है, प्रसंगा भौतिक संगति, तो भौतिक संगति के कारण मैं गिर रहा था, इससे जन्म मरण के सर्प के कुएं में मैं गिर रहा था। कृत्वा तस्सात सुरर्षिणा, सुरर्षिणा का मतलब है देवर्षि या सुरर्षि है ना, नारद जी, तो सुरर्षिणा का मतलब नारद जी के द्वारा, देवर्षि के द्वारा, कृत्वा आत्मसात, आत्मसात करके भगवान गृहीता, मैं पकड़ा गया हूँ, सुरर्षिणा यानी देवर्षि नारद जी के द्वारा आत्मसात करके मैं पकड़ा गया हूँ। आत्मसात का मतलब क्या है, ऐसे करके पकड़ा गया, गिर रहा हूँ, कोई व्यक्ति गिर रहा है तो कसके जो है आत्मसात कर लिया है ना, तो सुरर्षिणा देवर्षि नारद ने मुझको जो है आत्मसात कर लिया अपनी तरह है, उन्होंने जो है मुझको कर लिया है ना, मतलब लपेट लिया मुझको अपने हाथों में। कृप्त्वात्म सात सुरर्षिणा भगवान गृहीता, भगवान हे भगवान, नरसिंह भगवान हो गए, गृहीता मैं पकड़ लिया गया, गृहीता सो हम वैसा मैं, सो अहम वही मैं वो हूं, सो अहम का मतलब क्या है, मैं वही हूं, मैं कौन हूं जो कि गिर रहा हूं, गिर रहा था, किसमें गिर रहा था, कुएं में गिर रहा था जो सर्पों का भरा हुआ, सर्प क्या है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है ना, एक सर्प दस से काटता दूसरा सर्प है, तो कई हर जगह से सांप काटे जहां, तो ऐसा जो है ये कुआं जिसमें मैं गिर रहा था और बचाया किसने, देवर्षि नारद ने, मैं वही हूं, सो अहम मैं वही हूं, तो ये आत्मज्ञान कि मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, पूर्व काल में मेरी क्या स्थिति थी, सो अहम मैं वो हूं, इसको समझना चाहिए, हर भक्त को समझना चाहिए, सो अहम है ना, तो मायावादी कहते सो अहम मैं वही भगवान हूं, मायावादी कहते सो अहम सोहम सोहम है कि मैं भगवान हूं, ब्रह्मा जी कहते सोहम मैं कौन हूं जो गिर रहा था और बचाया, किसने बचाया, किसी भक्त ने बचाया है, नारद जी ने बचाया मुझे है, और नारद जी की परंपरा में जो आए भक्त हैं प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने बचाया हमको, तो हम भी क्या है, सोहम सोहम है ना, हमको भी बचाया, प्रभुपाद ने बचाया, और उन्होंने प्रभुपाद के भक्तों ने, उनके भक्त के भक्तों ने बचाया, तो मैं कौन हूँ, वो हूँ सोहम, तो भूलिए नहीं कि आप कौन है, नहीं सोचना कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं वो हूँ है ना, तो मैं वो हूँ है ना, याद रखो कि किसी ने आपको बचाया, किसी ने आपको कुछ रास्ता दिखाया, तो जीवन भर के लिए आप मानिए कि मैं वो हूँ जिसको इन्होंने रास्ता दिखाया, इन्होंने कुछ ज्ञान दिया, कुछ शिक्षा दी, कुछ उपदेश दिया, मैं वो हूँ शुभम है ना, तो ये जो भाव है, ये प्रहलाद जी का भाव है, ये हमको लेना चाहिए कि मैं वो हूँ, कभी भी मत सोचना कि वो पहले मैं था अब तो मैं नहीं हूँ, ऐसा वो तो पहले जो होना था तो हो गया, अब तो मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, अपने को क्या समझते हो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, समझते नहीं इस बात, जो पहले था सो हो गया, वो तो पहले की बात है, अब इस समय की बात तो ये मैं हूं, ये हूं है ना, सो हम ये नहीं है, प्रहलाद महाराज जो है उस बात को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूलना चाहते हैं, सो हम कथम वो विसर्जे, कथम माने कैसे, विसर्जे माने त्यागूं छोड़ूं, तब भक्त सेवा तुम्हारे सेवक की सेवा, तुम्हारे जिस सेवक ने यानी देवर्षि नारद ने मुझे बचाया था, और कैसे बचाया था, गले से जो है लगा करके मुझे बचा लिया, और मैं गिर रहा था, और मैं कैसे गिर रहा था, प्रसंगात प्रसंग भौतिक विषयों की संगति के कारण मैं गिर रहा था। तो देवर्षि नारद ने मुझको जो है कैसे बचाया। तो ये श्लोक के शब्द हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। जैसा कि बात के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। हाँ, आगे के श्लोक में, आगे श्लोकों में भगवान कहेंगे है ना क्या कि तुम वर मांगो, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को स्वीकार कर दिया। पहले से ही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मैं मतलब और कुछ नहीं मांग सकता आपसे। जिन जिन आपके सेवक ने मुझे बचाया उनकी सेवा को छोड़ करके मैं और कुछ नहीं मांग सकता। तो प्रहलाद जी जो है ये बात पहले से ही बता रहे हैं कि मुझसे आपको और कुछ नहीं कहना कि मैं आपसे कुछ मांगू, क्योंकि मैं इनकी सेवा नहीं छोड़ सकता है ना। तो प्रभुपाद कितना गहरा है, देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य कितना गहरा है। प्रभुपाद कहते हैं किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस बहन को स्वीकार कर दिया कि मनोवांछित वर मांगो। तो मन में तो बहुत सी वांछाएं हैं, हमें वर मांगू लेकिन क्यों मांगू, क्योंकि बुद्धि जो है बताती है कि नहीं मांगना चाहिए। मन तो कहता है भौतिक इच्छाएं मन में बहुत सी हैं और मन तो मांगता है, लेकिन जो मेरी बुद्धि है वो कहती है क्या कि नहीं मांगना चाहिए। जिस भक्त ने आपके जिस सेवक ने मुझे बचाया है उसकी सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं मांगना चाहिए, मेरी बुद्धि कह रही है ना। तो प्रहलाद जी बुद्धि से काम ले रहे हैं, बुद्धि शुद्ध है ना। तो आगे प्रभु लिखते हैं इसके विपरीत उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि अपने दास नारद मुनि की सेवा में उन्हें लगा रहने दें। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। आप समझ रहे हैं, वो अपने को अशुद्ध समझता है, जो शुद्ध भक्त है वो अपने को अशुद्ध समझता है, और मेरी रक्षा की है एक शुद्ध भक्त ने रक्षा की है तो मैं शुद्ध भक्त की सेवा करना चाहता हूँ। तो वो शुद्ध भक्त है, अपने को अशुद्ध समझता है तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। आगे मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे, ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। क्या कि गुरु जी ने हमको बताया है भगवान की सेवा करना, अब तो भगवान की सेवा करना है ना, अब गुरु की सेवा की क्या आवश्यकता है। तो ये जो भाव है ये ठीक नहीं है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि अब तो जो है मैं सीधे भगवान की सेवा करूंगा डायरेक्ट, तो ये नहीं है। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। जो भाव है यहां पर भाव की बात है कि भाव ये कभी नहीं होना चाहिए कि अब जो है मैं भी बराबर हो गया हूं, गुरु के बराबर हो गया हूं। तो पहले मुझे गुरु ने भगवान की सेवा में लगाया था, अब मैं भी भगवान की सेवा कर रहा हूं, गुरु जी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, अब क्या अंतर है। या मैं हो सकता अब तो उनसे आगे बढ़ जाऊं, अब मैं उनसे भी ऊपर उठ जाऊं है ना। तो ये भाव नहीं होना चाहिए है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए ये सिद्धांत नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, कल उनका तिरुभाव दिवस था। तानी चरण से भक्ति सने बांस, जन्म में है यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दास का दासानुदास बने। गोपी भरतो पद कमल योर दास दासानुदास। परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है, पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है, पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। मनुष्य को मन गढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनगढ़ंत ज्ञान, मनगढ़ंत ज्ञान का मतलब क्या है कि मैं अपने हिसाब से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। किसी व्यक्ति को आप अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उससे आपको ज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं तो मुझे आपसे ही ज्ञान लेना पड़ेगा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे, कि मैं अपने ज्ञान से आपको प्रसन्न कर सकता हूं, है कि नहीं। तो ज्ञान तो मुझे आपसे ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है, आपका जैसा स्वभाव है, आपकी जैसी पसंद है ना, तो मैं अपने ज्ञान से नहीं जान सकता, मुझे आपसे ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना, या गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना। भगवान सीधे नहीं बताते, भगवान सीधे ज्ञान नहीं देते अपना, है तो उनके जो अंतरंग सेवक है उनसे हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को मन गणन ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होता है, और जब वो योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। क्या? प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होता है। तैयार हो क्या? तैयार हो गुरु की सेवा करने की। मैं जन्म जन्म सेवा करूं, चक्षु दाना दिलो जेही जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म मैं उन प्रभु की सेवा करूं जिन्होंने मुझे चक्षु दान दिया, मुझे आंखें दी। क्या आंखें दी? क्या आंखें दी? कि भौतिक संसार क्या है, सर्पों से भरा कुआं है, और मुझे इससे बाहर निकलना है ना। ये ज्ञान जिन्होंने दी, जिन्होंने ऐसी आंखें दी है और रास्ता दिखाया कि कैसे बाहर निकलना है, चक्षुदान जिन्होंने आंखें दी, रास्ता दिखलाया। जन्म जन्म प्रभु से ही, जन्म जन्म उन प्रभु की मैं सेवा करूंगा। तो तैयार, आप तैयार रहें इसके लिए, मतलब तो बिल्कुल तैयार रहें, कभी ना सोचे जिंदगी नहीं, कभी तो जो है मैं ऊपर उठूं, है कभी तो मैं ऊपर उठूं, एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं जो है ऊपर उठूंगा, है ना। नहीं, किसी कंपनी में कोई आदमी काम करता है तो सोचता है एक दिन मैं भी मैनेजर बन जाऊंगा, है ना, और ऊंची पोस्ट मिलेगी और तरक्की होगी, है ना। कभी नहीं सोचा, है ना। तो फिर भगवत क्या लिखते हैं, और जब वो योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। तो स्वतः अवसर, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है, स्वतः अवसर मिलता है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का। मतलब आपकी इच्छा से नहीं, भगवान ने अपनी इच्छा से जब देंगे, है ना, तो फिर जो है वो अलग बात है, वो अलग बात है। और भगवान जो है फिर आपको, आप भगवान की सेवा में इतने मतलब भूल जाएंगे कि आप अपने को ही भूल जाएंगे, फिर गुरु की बात क्या है। भगवान की सेवा में आप अपने तक को भूल जाते हैं तो फिर गुरु को भूल जाएं तो उसमें क्या मतलब कहने की बात है। तो ऐसे में कोई दोष नहीं लगता कि आप गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे ब्रजवासी हैं तो कृष्ण से उनका सीधा संबंध है, तो वे अपने को ही भूले हुए हैं, है ना, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के प्रेम में अपने को ही भूले हैं। तो जब प्रेम की स्थिति आ जाए, आप अपने सब को भूल जाते हैं, हैं, आप अपने को भी नहीं जानते आप कौन हैं, कृष्ण के प्रेम में इतने आप जो डूब गए, तो फिर दोष नहीं लगता, आप सुन रहे। तो ये स्वतः अवसर, तब स्वतः अवसर मिलता है। लेकिन आप भूलने की कोशिश करें तो वो फिर क्या होता है, दोष होता है। क्या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपसे जो बड़े हैं उनको आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो गलत बात है ना। लेकिन आप भूल जाएं, आप भगवान ही आपको भुला दें, आप अपने तक को भूल जाते हैं, है ना। तो ब्रजवासी तो आपने को ही भूले हुए हैं, पिछले जन्म उन्होंने क्या किया था, क्या तपस्या की थी, कौन उनको गुरु मिले थे, क्या उन्होंने साधन किया था, वो सब भूले हुए हैं। वो कृष्ण के अलावा कुछ जानते नहीं, अपने तो को भी नहीं जानते कि हम कौन है, है ना। और कृष्ण को भी नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, वो कृष्ण के प्रेम में इतने भूले हुए हैं कि कृष्ण तक को नहीं जानते कि भगवान है। तो इस उनको दोष नहीं लग रहा है, कि भाई अपने गुरु की सेवा क्यों नहीं करते, है कि नहीं? तो अलग बात है, है ना। दृष्टि गोपियां हैं, अशिक्षित हैं, बिल्कुल कुछ जानती नहीं। माता यशोदा अशिक्षित हैं, कुछ जानती नहीं, कृष्ण को जानती नहीं, मेरा पुत्र है बस और मैं कृष्ण की माँ हूँ, बाकी वो कुछ जानती नहीं है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये स्थिति आती तो रूपा लेते हैं स्वतः, है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो है, मतलब अपने को आप इतना तुच्छ समझिए, इतने तुच्छ समझिए, गोपे भर तो पत कमले और दास दास हम दास हूं, कि मैं दास का दास हूं। हमेशा ये स्थिति अगर आप अपने मान लें तो आपको प्रत्यक्ष सेवा मिलेगी कृष्ण की। उसमें आप जो है, आपको कुछ भी याद नहीं होगा कि आप कौन है, फिर गुरु की तो बात बहुत दूर है, अपने को ही नहीं जानते आप कि आप कौन है कि नहीं। कृष्ण के साथ आपका एक संबंध बन गया, उसके अलावा आप कुछ अपने को नहीं जानते हैं और ना कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण भी कौन है। कृष्ण को भी आप नहीं जान पाते कि कृष्ण कौन है, है ना। कृष्ण की सेवा केवल जानते हैं, कृष्ण का प्रेम के अलावा और कुछ जानते नहीं। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए, है ना। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाए, यही सही निष्कर्ष है। अतः उन्होंने कहा, सो हम कथम न मिसरते तब भृत्य सेवा, मैं वो हूं। तो कैसे आपके सेवक की सेवा को छोड़ूं? आगे, भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूं। कबीरदास का भी एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। अगर दोनों सामने खड़े हैं तो सबसे पहले किसके पैर छू, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है, गुरु की ज्यादा कृपा है कि उन्होंने ही गोविंद बताए, है ना। तो ये विधि है, नहीं फिर गुरु की आज्ञा से हम गोविंद की सेवा करते हैं, है ना। तो फिर पूजा में फिर ये होता है कि भगवान की पहले पूजा फिर प्रभुपाद की पूजा होती है, जब आरती करते हैं जो भी करते हैं ये सब होता है, तो गुरु की आज्ञा से होता है ना। लेकिन हमें अपनी ओर से जो है पहले गुरु की गुरु को जो है नमस्कार करना है ना। इस तरह से जो है गुरु कभी भगवान से बड़ा भी बताया जाता है, कभी गुरु को भगवान के बराबर बताया जाता है, कभी गुरु को भगवान से नीचा भी बताया जाता है। और तीनों बातें सही हैं, वो समय के अनुसार है कि कैसी स्थिति में आप और कैसे समय में और कैसे स्थान में हैं। तो गुरु भगवान से बढ़कर के भी माना जाता है, गुरु को भगवान के बराबर भी माना जाता है और गुरु को भगवान से नीचे भी माना जाता है। तीनों बातें सही हैं, यह समय के अनुसार है कि किस समय कैसी बात सही है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सके, है ना। तो ये यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक का जो पद्य अनुवाद है वो विष्णुप्रिया देवी ने जो लिखा है ये मैं लिख के लाया हूँ, सुनिए। बड़ा अच्छा जो है इसमें कविता बनाई है। ये जग तो एक अंधकूप ऐसा है प्रभु बना हुआ, काल रूपी सर्व सदा डसने को वहां बैठा हुआ, विषय भोग कामी सब जन उसमें ही है पतित हुए, मैं भी था गिरने जा रहा संग बस उनके ही पीछे, देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर प्रभु बचा लिया, अब आपके भक्त की सेवा छोड़ कैसे मैं हूं सकता। अच्छा है, अब नारद प्रहलाद जी जो है मतलब इतने सचेत हैं कि असुरों के बीच में एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से बच्चे को जो है इतना ज्ञान हुआ कि वो भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इतना ज्ञान एक 5 साल के बच्चे को हुआ तो ये बहुत आश्चर्य की बात है और हर कोई जानना चाहता है, है कि ये आश्चर्य कैसे हुआ, तुझको किसने दिया, है ना। तो जब हिरण्यकश्यप ने पहले प्रहलाद महाराज को गोद में बैठा करके पूछा था, है सबसे पहले तो गुरुकुल में भेजा गया और उनके गुरु संग और अमर थे, दो गुरु थे, तो उन्होंने शिक्षा दे दी और शिक्षा पूरी हो गई और जो है प्रहलाद को गोद में हिरण्यकश्यप ने बैठाया, शिक्षा पूर्ण प्राप्त कर ली। हे पुत्र, तूने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली? हाँ पिताजी। अच्छा, तो सबसे अच्छी शिक्षा क्या पाई तूने? तो क्या कहा पुत्र ने? वरम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत हित्वात पातम गृहम मंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, है कि अपने को जो है जो मतलब पतन पतन में डालने वाला जो घर रूपी अंधा कुआं है उसको त्याग करके वनम वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए। ये कितने आश्चर्य की बात है। असुरों के समाज में एक बच्चा ऐसी बात बोले और वो शिक्षा प्राप्त करके आया असुर गुरुओं से जो है आसुरी शिक्षा प्राप्त करके आया बच्चा 5 साल का, और जब पूछा जाए कि सबसे बढ़िया शिक्षा तूने क्या प्राप्त की तो क्या बताता है कि जो घर है ये गृह में थी जो मतलब घर का वातावरण है ये कुएं के समान है, अंधे कुएं के समान है, इससे बच करके इससे बाहर निकल करके वन में जा करके हरि की शरण ले। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बच्चे को जो है कुछ मतलब वो गुस्सा नहीं होना चाहता, बहुत प्रेम है अपने बच्चे से, बहुत प्रेम है, तो इसलिए कुछ बात बोली नहीं बच्चे को, अपनी बात नहीं बोली कि बच्चे को जो है कुछ बुरा ना लगे, छोटे से बच्चे के जो है दिमाग में कोई मतलब धक्का ना पहुंचे, है ना। तो हिरण्यकश्यप ने उन गुरुओं को कहा, हंस करके कहा, हालांकि बहुत गुस्से वाली बात थी लेकिन बच्चे को जो है धक्का ना लगे किसी प्रकार से, हंस करके कहा कि अरे ठीक से शिक्षा दो इस बच्चे को, है क्योंकि कुछ जो है वैष्णव लोग आते हैं असुर के बेस में, कुछ जासूस इस्कॉन के भक्त हैं जो आते हैं और हमारे बच्चे को जो है कुछ गलत शिक्षा देते हैं, है तो बहुत सावधानी से कि कोई जो है ऐसे छल बेस में असुर के बेस में कोई वैष्णव ना आए तुम्हारे गुरुकुल में और हमारे बच्चे को जो है गलत शिक्षा ना दे, ले जाओ अच्छी शिक्षा दो, असुरों की शिक्षा दो। तो कुछ जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि बहुत गुस्सा आया था, लेकिन प्रहलाद से बहुत प्रेम था कि बच्चे के ऊपर जो है कुछ गलत वो धक्का ना लगे उसके दिमाग में, तो ठीक है ले जाओ अच्छी शिक्षा दो, असुर की शिक्षा दो बढ़िया, आसुरी शिक्षा प्रदान करो मेरे बच्चे को, अच्छा सुर बनाओ मेरे जैसा। तो ले गए, है ना। अब गुरुओं के लिए बड़ी लज्जा की बात थी सबको तो असुरों की शिक्षा दी और वहां जाकर के पिता के सामने उल्टा बोल दिया इसने, है बड़ा नालायक है तो असुरों ने जो है अब जब अपने घर में आ गए, गुरु के घर में आ गए, तो गुरु ने पूछा बेटा वत्स प्रहलाद कि गलत शिक्षा तुमको किसने दी, ये गलत शिक्षा तुमको किसने दी? तो क्या प्रहलाद बताते कि मेरे गुरु नारद जी उन्होंने शिक्षा दी थी, जब मैं माता के घर में था तो नारद जी ने शिक्षा दी थी, क्या बताते है? सत्य बोलना चाहिए ना, तो फिर बताना चाहिए, नहीं सत्य नहीं बोलना चाहिए नहीं ऐसे में सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसे में सत्य नहीं बोलना चाहिए, 7 स्थानों में झूठ बोलना आवश्यक है। स्त्री से नर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानंतम सुगुप्तम। तो फिर भी प्रहलाद जी ने झूठ भी नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला, उत्तर दूसरे प्रकार से दिया, है क्या उत्तर दिया, हंस करके उत्तर दिया, बड़े आश्चर्य की बात है, है कि माया भगवान की माया के कारण लोग गलत को सही और सही को गलत मानते हैं, अगर आप मानते हो कि किसी ने मुझे सिखाया है तो जो भगवान सबके इसमें बैठे हैं वही मुझे शिक्षा दे रहे हैं। चलो अब क्या उत्तर बनू, तो ये नहीं बताया कि नारद जी ने मुझे शिक्षा दी थी। यहाँ तो भगवान से बता रहे हैं कि नारद जी ने मुझे शिक्षा दी, उन्होंने शिक्षा दी, अब मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ू। लेकिन असुर गुरु जो है पूछ रहे हैं कि किसने तुमको एक गलत शिक्षा दी, तो गलत प्रश्न ही था, प्रश्न ही गलत था। तो अगर आप ऐसे उत्तर दें कि नारद जी ने शिक्षा दी, तो इसका मतलब आप भी उस शिक्षा को गलत बोल रहे हैं कि नहीं। कोई आपसे पूछे कि हरे कृष्णा की जो बातें हैं तुमको जो है किसने ये बेकार की बातें सिखाई, और आप बताओ कि प्रभु जी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने सिखाई, तो क्या हो गया? पहली बात तो ये हो गया कि आपने स्वीकार कर लिया कि ये गलत बातें हैं, कृष्ण भावनावृत की बातें सब गलत हैं। अगर आपने इस तरह से जवाब दिया तो अगर सत्य जवाब दिया तो सत्य में बहुत बड़ा असत्य ये हो गया कि आपने उस गलत को स्वीकार कर लिया, आपने गलत बोला कि गलत शिक्षा दी है कि नहीं। तो सत्य बोलने में भी बहुत असत्य है, बहुत बड़ा असत्य है ना, क्योंकि वो व्यक्ति जो है पहले से गलत मान रहा है, इस शिक्षा में गलत मान रहा है, तो प्रहलाद जी ने नहीं बोला। और इसमें क्या था, नारद जी की निंदा करता, गुरु की निंदा, तो गुरु की निंदा तो कर ही रहा है कि किसने तुमको सिखाया सब हरे कृष्णा का जप करना, किसने सिखाया तुमको, तो निंदा तो कर ही रहा है। और आप नाम ले लोगे उस भक्त का कि किसने सिखाया, तो आप भी उसकी निंदा कर रहे हैं है कि नहीं। तो प्रहलाद जी ने अपने गुरु नारद जी की निंदा नहीं होने दी, तो बिल्कुल नाम नहीं लिया, बिल्कुल नाम नहीं लिया नारद जी का है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद वो जो है चिल्लाए, अरे अरे लाओ लाओ बैंस लाओ, इसको जो है शिक्षाओं के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है, इसको दंड के द्वारा ही सुधारना पड़ेगा, ये बहुत ढीठ है, बहुत दुष्ट बालक है। और फिर आसुरी शिक्षाएं प्रदान की, अब बालक जो है विरोध कर नहीं सकता था, विरोध कर नहीं सकता था, तो सब कुछ सिखा दिया। और फिर लाए किसके पास, लाए पिताजी के पास, क्या कहेंगे, अब सीख गया है सब कुछ, अब सीख गया सब कुछ। और जब प्रहलाद ने वो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, बहुत प्रसन्न हुआ, अब तो पूरी आसुरी शिक्षाओं में ये जो है मतलब हो गया ट्रेन, प्रशिक्षित हो चुका है ना। बेटा अब बताओ सबसे बढ़िया शिक्षा तुमने क्या सीखी, तो बेटा ने और ऊंची शिक्षा बता दी, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मवेदनम, भगवान की भक्ति नौ प्रकार की जो भक्ति है, तो ये जो है सबसे श्रेष्ठ शिक्षा, मैं सबसे श्रेष्ठ शिक्षा तो इसको मानता हूं। अब तो और ज्यादा समस्या पैदा हो गई है, वो बच्चा तो अब और ज्यादा आगे बढ़ गया उल्टी शिक्षा में, और आगे बढ़ गया। तो फिर जो ना, तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि हिरण्य किसी को तो मान रहा है कि तुमने सीखी शिक्षा, तुमने कुछ, तुम कुछ जानते नहीं थे और मैंने तुमको इन गुरुओं के पास भेजा है, तो इन गुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया ये तुम बताओ कि सबसे बढ़िया क्या तुमने सीखा, और वो बच्चा जो है ये बता रहा है, तो सीधी बात है कि ये गुरुओं ने सिखाया। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद पर गुस्सा नहीं हुआ, इन गुरुओं पर शिक्षा गुस्सा हुआ कि तुम ही लोग जो है मतलब मेरे बच्चे को बिगाड़ते हो, और मित्र के रूप में तुम ही जो है मेरे शत्रु का काम करते हो। तब उन्होंने मतलब बताया कि महाराज ना तो हमने इसको सिखाया ना किसी और ने सिखाया, इसकी बुद्धि ऐसी स्वभाव से ही है, जन्मजात इसकी ऐसी बुद्धि है, जन्म से ऐसी बुद्धि ऐसी है, मतलब बिगड़ा हुआ है, जन्म से बिगड़ा हुआ है, ना हमने सिखाया ना किसी ने सिखाया। तब वो कहता है जन्म से बिगड़ा हुआ है, तब उससे पूछता है प्रहलाद से कि तेरे गुरु कह रहे हैं इन्होंने नहीं सिखाया, किसने सिखाया तुझको। अब एक बहुत बड़ा एक ये बन गया ना, एक आश्चर्य बन गया, एक बहुत बड़ी जो है ये बात बन गई कि ये बच्चा जो है मतलब कहां से सीखा, किसने सिखाया, है ना, तो क्या बताया पढ़ाते ने? नहीं, उत्तर दूसरे तरह से उत्तर दिया, दूसरे तरह से मतलब न कृष्ण वरदान से तो वहां के हो विभक्ति ग्रह बताना है, मतलब न कृष्ण वरदान से तो वह मिथो भी पद्य ग्रह बताना है कि कृष्ण में जो मति है ना, तो मतलब न कृष्ण परता किसी दूसरे से के सिखाने से भी नहीं आती है कृष्ण मति, और ना अपने आप आती है कृष्ण मति है, मिथो भी पद्य और एक दूसरे से मिलकर के भी नहीं आती कि कोई दूसरा सिखाए तो आ जाएगी या अपने आप आ जाएगी या आपस में मिलकर के आ जाएगी है। ग्रह व्रताना, क्यों ग्रह व्रत, जो ग्रह व्रति हैं उनमें से कोई दूसरे को कृष्ण की मति नहीं दे सकता, ना अपने आप कृष्ण की मति आ सकती है, ना आपस में मिलकर के कृष्ण की मति आ सकती है, तो ये कहा कि नहीं आ सकती, लेकिन कैसे आ सकती है वो नहीं बताया। अदांत को फिर विश्रांत मिश्रम पुनः पुनः सर्व सर्वणाना, इंद्रियों को भस्म किया नहीं तो जाते हैं नरक में, और इंद्रिय तृप्ति भोगते हैं पुनः पुनः चरवित सर्वणाना, चबाए हुए को बार बार चबाते हैं। उत्तर ये दिया, नारद जी का नाम नहीं लिया, मतलब नहीं ऐसे तो हो नहीं सकती, ऐसे भी नहीं हो सकती, ऐसे भी नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है ये नहीं बताया है? या फिर आगे बताते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुष के चरणों की धूल मैं स्नान ना करे तब तक नहीं हो सकता। लेकिन कौन से महापुरुष है जिनके चरणों की धूल मैंने स्नान किया है या मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि नारद जी की निंदा होती, और नारद जी की निंदा, वो निंदा के ही लिए तो पूछ रहा था कि किसने तुझको सिखाया, तो नारद जी का नाम नहीं लिया है ना। तो दो दो प्रकार की मतलब ये भावनाएं हैं, एक तो सेवा करना है गुरु की, और दूसरा उन गुरु को की जो है निंदा नहीं होने देना है, निंदा नहीं होने देना है किसी प्रकार से, तो किसी को मौका नहीं देना है कि वो निंदा करें, है ना। तो दोनों प्रकार की भावनाएं हैं। अब प्रहलाद जी यहां जो बता रहे हैं कि मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ूं, तो कोई व्यक्ति गुरु की सेवा करता है या वैष्णवों की सेवा करता है ना, तो फिर सोचे कि जैसे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं इनकी सेवा छोड़ दूं, जैसे कर्मी और ज्ञानी है ना, तो वे छोड़ देते हैं उस साधन को, जिस साधन के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वो सब साधन छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं चलता, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि हम ऊपर उड़ गए फिर हम ज्ञान को भी छोड़ देंगे, है ना, हम बहुत ऊपर उड़ गए हैं, है ना, हम फिर परम सत्य के साथ एक हो गए हैं तो हम इस ज्ञान को भी छोड़ देंगे, परम सत्य के ज्ञान को भी हम छोड़ देते हैं, है ना। तो उनका विचार है कि जैसे सीढ़ी के द्वारा आप छत में पहुंच गए तो सीढ़ी को छोड़ करके भी छत में जाएंगे, अगर सीढ़ी को पकड़े रहेंगे तो छत में कैसे जाएंगे। तो उनका यही कहना है कि अगर साधन को पकड़े रहे तो आपको लक्ष्य फिर कैसे प्राप्त होगा, तो लक्ष्य जैसे प्राप्त होता है तो साधन को छोड़ दो, तो इसलिए उनका सिद्धांत ये होता है। लेकिन भक्ति में ये सिद्धांत नहीं है, भक्ति में सिद्धांत नहीं है कि हम सोचे हैं कि अब मैं जो है बहुत ऊपर उठ गया हूँ, अब मुझे वैष्णवों के संग की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो बहुत ऊपर उठ गया हूँ, तो ये चीज नहीं है। भक्ति के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। वैसे लोग गुरु को भी त्यागना चाहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति हो गई, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने व्यवहारिक उदाहरण करके दिखाया है? तो प्रभुपाद एक बार सवेरे के प्रातःकालीन भ्रमण में जा रहे थे, है ना, तो विदेश में ही कोई स्थान था कि मंगल आरती के बाद जप करने का जब समय होता है, तो प्रभुपाद जप करते करते मंदिर से बाहर निकलते थे तो कुछ भक्त उनके साथ में चलते थे, और उसमें बातचीत भी होती थी, जब भी करते थे और बातें भी करते थे प्रभुपाद, है ना। तो बातें जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण होती थी, है ना। तो प्रभुपाद जो है पैदल चल रहे हैं तो रास्ते में जो है एक चढ़ान आई, कभी कभी होता ना रास्ते में काफी ऊंचा जो है मतलब चढ़ान होती है, तो भवानंद उस समय थे प्रभुपाद के शिष्य, तो प्रभुपाद को जो है उन्होंने हाथ का सहारा देकर के ऊपर चढ़ाया, जब ऊपर चढ़ गए तो फिर नीचे ढलान थी, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको धक्का देके नीचे नीचे धक्का दे दिया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने प्रभुपाद को जो है हाथ का सहारा लेकर के धोखा चढ़ाया और प्रभुपाद ऊपर आ गए तो मुझे धक्का देकर के नीचे कर दिया। तो आगे आगे चलना था, नीचे उतरना ही था, तो नीचे उतरने में इतनी परेशानी नहीं थी, तो प्रभुपाद ने धक्का दे दिया है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्रभुपाद बोले, मायावादी ऐसा होता है, मायावादी ऐसा होता है जिस गुरु के सहारे ऊपर उठता है आगे चल करके उस गुरु को छोड़ देता है। उनका ये सिद्धांत ही है, उनका ये सिद्धांत ही है कि हम भगवान बन गए, आप समझ रहे हैं। तो ये वैष्णव भक्ति में ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है स्वयं ये दिखाया। तो ध्रुव महाराज ने भी भक्तों का संग मांगा। तो ध्रुव महाराज भी जो है भक्तों का संग मांगते हैं। भगवत गुण कथा अमृत पान मत्ता, जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए है ना, और कहते हैं वरदान मांगो है, तो वो भी ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए जिनमें आपकी कथा का अमृत पीते हुए मैं जो है मतवाला हो जाऊं, यानी मतवाला भूल जाऊं। तो भगवान की कथा का अमृत जो है एक ऐसी शराब है जिसमें व्यक्ति अपने को भूल जाता है। तो मैं जो है ऐसा मतलब मुझे भक्तों का संग चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने भी ये मांगा, भक्तों का संग मांगा है ना। परंतु एक अंतर है, ध्रुव महाराज ने नारद जी की सेवा नहीं मांगी। अब यहां पर एक बात आप समझे कि प्रहलाद जी ने जो है नारद जी की सेवा मांगी, ध्रुव महाराज ने भगवान से कुछ नारद जी का विशेष नाम नहीं लिया, नारद जी का विशेष नाम नहीं लिया कि मुझे उनकी सेवा करना है ना। अंतर है ना इसमें, प्रहलाद जी को जो है मतलब विशेष रूप से वो नारद जी की सेवा मांग रहे हैं है ना। तो अंतर क्या है कि ध्रुव महाराज जो है रजोगुण के धरातल पर थे, तो नारद जी ने उनको कृष्ण कथा नहीं सुनाई, समझ रहे, नारद जी उनको कृष्ण कथा नहीं सुनाई, रजोगुण के धरातल पर थे, तो कुछ नियमों का पालन करने का आदेश दिया ध्रुव महाराज को कि कुछ नियमों का पालन करो, इस मंत्र का जाप करो और इस मूर्ति का ध्यान करो है, और फूलों से अर्पित करो, ये करो, इस तरह से उन्होंने मतलब कुछ नियम का पालन करने के लिए बताया जिससे शुद्धि हो ध्रुव महाराज की है ना। क्योंकि वे कृष्ण कथा नहीं सुन सकते थे क्योंकि उनका चित्त बहुत अशांत था है ना, तो कृष्ण कथा नहीं सुन सकते थे, वो रजोगुण में थे है ना। तो जब उनसे शुद्धि हुई तो उन्होंने भक्तों का संग मांगा कि मुझे ऐसे स्थान में मुझे जो है मतलब रहने को मिले जहाँ भक्तों की कथा हो, भक्त लोग कथा करते हैं आपकी, आपका गुणगान करते हैं है ना। तो नारद जी के द्वारा उनको कृष्ण कथा नहीं प्राप्त हुई, लेकिन कृष्ण का जो ध्यान है, मंत्र है, वो उनको प्राप्त हुआ है ना। तो ये लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य तो ये होता है कि भक्तों के संग में हम कृष्ण कथा सुने, ये लक्ष्य होता है ना। तो प्रहलाद जी ने जो है क्यों मांगा नारद जी का संग, क्योंकि नारद जी ने जो है सीधे कृष्ण कथा ही सुनाई प्रहलाद जी को। जब गर्भ के अंदर थे प्रहलाद जी तो उनकी चेतना इतनी विकसित थी कि वे कृष्ण कथा सुन सकते थे। तो गर्भ के अंदर माता के गर्भ में भी प्रहलाद जी को नारद जी कृष्ण कथा सुनाते थे, और कितने समय तक कृष्ण कथा सुनाई नारद जी ने, 36,000 साल तक। और माता कयाधु ने बच्चे को जन्म नहीं दिया क्योंकि उसको डर था कि इंद्र जो है बच्चे को मार सकता है अगर मैं जन्म लूंगी है ना, क्योंकि इंद्र जो है कयाधु को पकड़ के ले जा रहा था, हिरण्यकशिपु को ये मान करके तपस्या के द्वारा वो नष्ट ही हो चुका, उसके शरीर को भी जो है दीमक ने खा लिया था, उसके शरीर में जो है मांस खून था ही नहीं, और शरीर भी ढक गया था मिट्टी से मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो कयाधु को लेके जा रहा था कि ये जब जैसे बच्चे को जन्म देगी मैं बच्चे को मार डालूंगा, मैं इस माता का कुछ अनिष्ट नहीं करूंगा। तो कयाधु को इस बात का डर था, तो नारद जी आश्रम में रहती हुई वो डर के कारण वो बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी, और हिरण्यकशिपु जब तक ना आए, नारद जी ने कहा था कि तुम मेरे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारा पति ना आए तपस्या करके। तो हिरण्यकशिपु ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। तो उस तरह से 36,000 साल पृथ्वी 36,000 साल होते हैं, इतने समय तक नारद जी ने अपने आश्रम में प्रहलाद जी को क्या किया, कृष्ण कथा दिया, है कि नहीं। तो ये जो है मतलब प्रहलाद जी इसलिए नारद जी की सेवा मांग रहे हैं। जैसे नलकुबर मणिग्रीव, इनको भी नारद जी ने इनको भी नारद जी ने कुछ प्रदान किया, कुछ शिक्षा प्रदान की नलकुबर मणिग्रीव को। कैसी शिक्षा थी? दंड देकर दे, क्योंकि वो शिक्षा पाने के अधिकारी नहीं थे। जैसे ध्रुव महाराज रजोगुण में थे, लेकिन तो भी कुछ शिक्षा दी कि भाई ये पूजा करो, ये मंत्र का जाप करो, लेकिन वे तमोगुण में थे। नलकुबर मणिग्रीव तमोगुण में थे, है ना, तो वे शिक्षा किसी प्रकार की शिक्षा पाने, ना तो कृष्ण कथा पाने के योग्य थे और ना किसी प्रकार के नियम का पालन करने के योग्य थे। बिल्कुल तमोगुण में थे, शराब पी करके मस्त और नग्न खड़े थे। तो उनको नारद जी ने शिक्षा दी जैसे दंड दे करके, दंड दिया, है ना, दंड दिया कि 36,000 साल तक वृक्ष बनाओ, देवताओं के 100 साल तक उनको दंड दिया। इनका भी 36,000 साल दंड वृक्ष के रूप में, और मेरी कृपा से तुमको याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की थी कि तुम वृक्ष बने हो, तुम्हें दंड मिला है, ये कृपा नारद जी ने की, है ना। तो जब उन्होंने जो है मतलब भगवान से वर मांगा, तो उन्होंने क्या वर मांगा, नलकुबर मणिग्रीव को जब भगवान ने कार्तिक में, तो हम लोग ये कथा सुनते हैं ना, ये लीला हुई है ना, कि वृक्ष को जो है गिराया और उनका उद्धार किया। तो जब वो मतलब वृक्ष योनि से जब उनको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, है ना, वो यक्ष थे, तो जब उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, तो क्या प्रार्थना की, दृष्टि सताम दर्शन तो भगवत तरुणा, आपके भक्तों का हमें दर्शन हमें हमेशा प्राप्त हो, आपके भक्तों का दर्शन हमें हमेशा प्राप्त हो, दर्शन ही मांगा। तो नारद जी के दर्शन से ही उनकी आंखें खुली कि वे कितना गलत कर रहे हैं। तो भक्तों का दर्शन ही मांगा, क्योंकि वही जो है मतलब एक कारण था कि जिससे वे भगवान के निकट आए, है ना, तो साधुओं का दर्शन मांगा। तो प्रहलाद महाराज ने नारद जी की सेवा मांगी, तीनों प्रहलाद नारद जी के शिष्य हैं, तीनों नारद जी के शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज सतोगुण में, ध्रुव महाराज रजोगुण में, और नलकुबर मणिग्रीव तमोगुण में, है आप समझ रहे हैं। तो सतोगुण में है तो उनको कृष्ण कथा प्रदान की नारद जी ने, रजोगुण में ध्रुव महाराज तो नियम प्रदान किए, मंत्र जाप और पूजा है, और तमोगुण में दंड प्रदान किया, तमोगुण व्यक्ति को दंड देकर के ही सुधारा जा सकता है। तो तीनों अलग अलग प्रकार का वरदान मांग रहे हैं, प्रहलाद जी मांग रहे हैं नारद जी की सेवा, व्यक्तिगत सेवा, ध्रुव महाराज मांग रहे हैं भक्तों का संग जिसमें कृष्ण कथा होती है, और जो नलकुबर मणिग्रीव हैं वो मांग रहे हैं भक्तों का दर्शन, भक्तों का दर्शन, है ना। तो ये अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, है ना, इस प्रकार से हमें जो है देखना है कि दर्शन के द्वारा पवित्र होंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने सेवा मांगी। तो प्रभुपाद ने कभी ये भी कहा है कि जैसे रेलगाड़ी जो समांतर पटरियों पर चलती है, वैसे गुरु और कृष्ण दोनों से संबंध रहता है। प्रभुपाद ने ये कहा, क्या कहा, कि गुरु और कृष्ण दोनों से संबंध अपना रखना है। जैसे रेलगाड़ी दो समांतर पटरियों पर चलती है, एक पटरी भी अगर मतलब गड़बड़ हो गई तो रेलगाड़ी ध्वस्त हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से गुरु और कृष्ण दोनों समान रूप से संबंध रखना है, है ना। जदुरानी को उन्होंने पत्र लिखा था, शायद जदुरानी प्रभुपाद कैलेंडर में आता है वो, तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा था कि कृष्ण तुम्हारे पति हैं और मैं तुम्हारा पिता हूं। तो ये कन्या जो है अपने पति को भी भूल सकती है, अपने पिता को भी नहीं भूल सकती, उसी प्रकार से तुम कृष्ण को भी नहीं भूल सकती और मुझे भी नहीं भूल सकती। तो इस तरह से प्रभुपाद ने मतलब पत्र लिखा था जदुरानी को, है ना। जैसे सत्यभामा तो कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए, लेकिन पिता से संबंध उन्होंने छोड़ा नहीं, सत्यभामा के पिता है सत्रजित, तो जब सत्रजित मारे गए थे सत्यधर्मा ने हत्या कर दी थी, तो सत्यभामा रोती हुई आई कि मेरे पिता की हत्या हो गई है और कृष्ण को समाचार दिया हस्तिनापुर में आकर के, है ना। तो कृष्ण ने भी शोक मनाया, ये नहीं कहा कि अब मैं तुम्हारा पति हूं तो तुम अपने पिता की हत्या का क्यों शोक कर रहे हो, नहीं, कृष्ण ने भी शोक मनाया। तो इसी प्रकार से जो है मतलब ये सब बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हरि बोल, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधिका रमण जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव कृष्ण बलराम की जय। हरि बोल।